भट्टी के आज के सत्र में, अभी के सत्र में हमारे बीच आदरणीय उषा बहन, जिन्हों को ऐसे कहेंगे कि ज्ञान की देवी, जिन्हों की जीवा पर सरस्वती विराजमान है, ऐसी विशेष आत्मा आप सबके लिए यहाँ पहुंची है। बहुत बहुत दिल से हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। संक्षिप्त में थोड़ा परिचय दे तो, जैसे आपका लौकिक जन्म अफ्रीका में हुआ, फिर 76 से आपने, आपका फैमिली भारत में सेटल हुआ, आप जब ज्ञान में चले वहाँ ही अफ्रीका में 12 साल के थे, फिर यहाँ आने के बाद भी आपकी लौकिक अलौकिक दोनों पढ़ाई चलती रही, और 1980 में आपने अपना जीवन बाबा की सेवा में समर्पित किया, और 80 से 92 तक आप बॉम्बे और हैदराबाद में विशेष सेवाएं देते रहे। आपके पास विशेष तीनों भाषा का, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती, तीनों भाषा को बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, और आप विशेष हमारी जो विंग्स है उसमें पॉलिटिकल विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हो, और आपने विशेष दो बुक्स आपने लिखी है, और उसमें एक है सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप और दूसरी है आध्यात्मिकता की ओर। काफी जगह पर औद्योगिक क्षेत्रों में आपने इस सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के कोर्सेज कराए हैं, और बहुत ही उसके प्रेजेंटेशन आदि भी है, जैसे आपके आध्यात्मिकता की ओर की जो बुक है वो भी हर एक के लिए बहुत आवश्यक है, व उससे कईयों ने आपकी बुक को पढ़कर अनेकों को ये जो हमारा साप्ताहिक कोर्स है वो अच्छी तरह से करा सकते हैं, वो बुक गाइड का काम करती है। और भी दो बुक अंडर तैयार हो रही है गीता के बारे में भी, आपको रामायण और भगवद गीता का जो ज्ञान है उसमें बड़ा अच्छा संशोधन किया है, और आपकी वो प्रेजेंटेशन भी लगभग भारत में, अफ्रीका, नॉर्थ एवं साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया और कई विदेशों में भी दिखाए जा रहे हैं। आप बहुत फेमस, बहुत ही अच्छे प्रखर वक्ता हो, हम सब जानते हैं, YouTube में आपके कई प्रोग्राम्स आते रहते हैं हिंदी इंग्लिश में, इसलिए ऐसे तो आपसे सब परिचित है। आज का हमारा जो यहाँ का क्लास है उसका विषय रहेगा सर्व खजानों की खान मुरली, और उसके बाद आत्मनिरीक्षण भी 7 से 8 अर्थात पीछे के 1 घंटे में सबको आत्मनिरीक्षण कराएंगे। जरूर सब यहाँ बैठे रहे, जल्दी न करे, ऐसा स्पीकर हमें कोई घड़ी घड़ी नहीं मिलता है, सन्मुख मिले हैं तो उनके ज्ञान के साथ साथ वाइब्रेशंस भी हमें मदद करेंगे, इसलिए जरूर 8 बजे तक सबको यहाँ ही बैठना है। तो मैं अभी आदरणीय उषा दीदी को निवेदन करती हूँ कि आज का विषय स्पष्ट करें। ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के इस बेहद के परिवार में बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन कितना ज्ञान रत्नों से भरपूर करते रहते हैं, और ये विशेषता सिर्फ बाबा के इस बेहद परिवार में ही है। दुनिया के चाहे कितने भी सत्संग क्यों ना होते हो, बड़े बड़े महात्माएं क्यों ना हो, लेकिन रोज ज्ञान की बातें कोई सुनाए ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आज बाबा के पास जब से दादियां आई या 1936 से लेकर के जब से बाबा ने पधरामणी की, तब से लेकर के एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि जब हम सब बच्चों को ज्ञान मुरली न मिली हो। इतना अथाह ज्ञान का सागर, और ये अथाह ज्ञान के सागर को चिड़ियाओं ने हप कर लिया। शास्त्रों में तो यही कहानी है कि चिड़ियाओं ने ज्ञान सागर को हप कर लिया। तो इतने सालों का जो बाबा का ज्ञान की एक एक बात सुनते रहे तो भी ऐसे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ समझना आवश्यक है। तो ये बाबा की मुरली जो है, ये मुरली ही जैसे हम सब ब्राह्मणों के लिए जीवदान है, प्राण है ना? या दूसरे शब्द में कहे, कई बार बाबा कहते हैं कि ये मुरली तो प्रभु का प्रेम पत्र है हर बच्चे के लिए। प्रतिदिन हम भगवान जैसे एक प्रेम पत्र हर बच्चे के नाम भेज देता है, और एक्यूरेट जैसे उसी समय के लिए आवश्यक क्यों ना हो। जैसे आज सुबह की मुरली जब मैं सुन रही थी तो महसूस हुआ कि देखो, माताओं का संगठन होने कारण रूठने की बात को बाबा ने कैसे लिया, क्योंकि माताओं को रूठना जल्दी आ जाता है ना। तो ये प्रभु प्रेम पत्र के बच्चे, आप यहाँ आए हो तो ये संस्कार यहाँ ही स्वाहा करके जाना। जैसे डायरेक्ट बाबा आपको प्रेम से इस बात को समझा रहे थे कि कभी भी न बाबा से रूठना है, न मुरली से रूठना है, न बाबा के घर से रूठना है, न बाबा की कोई बातों से रूठना है। तो इसीलिए कितना एक्यूरेट समय अनुसार ये मुरली आज सबको प्राप्त हुई। तो इसीलिए लगता है कि बाबा का प्रेम पत्र भी एक्यूरेट समय पर, जैसे उस दिन के लिए कई आत्माओं का ये संस्कार होगा जो आज बाबा ने रियलाइज करा दिया कि बच्चे तुम्हें ये संस्कार, भगवान का ये प्यार को महसूस करना कि भगवान डायरेक्ट आपको समझा रहा है और कह रहा है कि संस्कार को यहाँ छोड़ करके जाना है। महसूस हुआ बाबा के प्यार को, किया बाबा के प्यार को महसूस सभी ने। भावार्थ ये कि बाबा के हर रोज के महावाक्य भी ऐसा लगता है कि सचमुच बाबा ने आज के दिन के लिए हम सबको इमर्ज करके ही ये मुरली चलाई थी। भले जब भी चलाई होगी, उस समय तो बाबा के सन्मुख थोड़े से बच्चे होंगे, लेकिन बाबा जानते थे कि आने वाले समय में इतने बच्चे आएंगे। तो जैसे ये सभा को, आज की सभा को बाबा ने इतने सालों पहले इमर्श किया होगा और इमर्श करते हुए वो मुरली सुनाई थी, और इसीलिए आज के दिन ही वो मुरली आई। दूसरी बात के जैसे बाबा की मुरलियां हम सभी सुनते हैं, तो एक तो बाबा की साकार मुरली होती है, दूसरी बाबा की अव्यक्त मुरली होती है। कई बार कई बच्चे कहते हमें अव्यक्त मुरली ज्यादा अच्छी लगती है, साकार मुरली में तो बाबा वही बातें करते हैं, इसीलिए कई लोग संडे संडे ही आना पसंद करते हैं, ऐसा है यहाँ क्या? व्यक्त मुरली ज्यादा पसंद है और साकार मुरली इतना पसंद नहीं करते हैं। समझ लिए बाबा साकार में क्या कहना चाहते थे? मैं कहूंगी नहीं समझा है, क्योंकि साकार मुरली में सब कुछ होता है। जैसे भोजन के लिए कहा जाता है कि भाई विटामिन्स भी चाहिए, तो मिनरल्स भी चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए भोजन में। इसलिए भारतीय भोजन के थाली में दाल भात सब्जी रोटी सब कुछ होता है, मिठाई भी होगी तो सब कुछ होता है। लेकिन अव्यक्त मुरली जो है, जो ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण होने के बाद जो मुरली चली है, तो वो संपूर्णता की बातें ज्यादा होती है, जो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य भी है संपूर्ण बनने का। इसलिए बहुत अच्छी लगती है कि हाँ जल्दी जल्दी संपूर्ण बने। लेकिन बनने का आधार क्या है? तो कहेंगे कि संपूर्णता को प्राप्त करने का जो आधार है, निचोड़ है, या वो स्थिति है, वो है अव्यक्त मुरलिया, जो काफी हैवी डोज होता है। जैसे कोई मिठाई का माल हो, कितना हजम कर पाएंगे उसको, कितना हजम कर पाएंगे? और रोज अगर ऐसे माल मिले मिठाई का, तो अच्छा लगेगा, नहीं खा सकेंगे। फिर आएगा याद, दाल भात सब्जी रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोज दाल भात सब्जी रोटी खा सकते हैं, दाल भात सब्जी रोटी रोज खा सकते हैं, लेकिन रोज मिठाई का थाल हो वो नहीं खा सकते हैं। वो हफ्ते में एक दिन ही अच्छी लगती है। इसीलिए बाबा की साकार मुरली, ये दाल भात सब्जी रोटी ज्ञान योग धारणा सेवा, जिसमें सब बातें कवर है। अब जब बात आती है कि बाबा रोज ही तो वो बातें कहते हैं, लेकिन नहीं, रोज बाबा का कहने का एंगल अलग अलग होता है, एक एंगल से बाबा नहीं कहते हैं। जब भी बाबा ये भी बात कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, ये याद करने की बात का भी हर रोज का एंगल अलग अलग होता है। अगर ध्यान से सुनेंगे और उस एंगल को पकड़ लेंगे, तो समझ में आएगा कि आज बाबा ने किस एंगल से ये मुरली चलाई है और किस बात के आधार से उस बात को जोड़ा गया है कि ये करने से कैसे ये स्थिति बनेगी। तो रोज बाबा का एंगल अलग अलग होता है, विधि बाबा अलग अलग बताते हैं, उस विधि को अगर पकड़ लिया तो सिद्धि स्वरूप बनना आसान हो जाएगा। तब कहा कि अव्यक्त मुरलियां तो जैसे बहुत हैवी है डाइजेस्ट करने के लिए, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको धारण करना बहुत कठिन होता है, उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो बाबा की मुरली हम सब के लिए एक प्रेम पत्र है। रोज भगवान एक प्रेम पत्र हमें लिखता है। हम कितना बाबा को प्रेम पत्र लिखते हैं, जवाब देते हैं? बहुत मुश्किल होता है। हम सोचते हैं बाबा तो जानता ही है ना हमें, बाबा तो हर बच्चे को जानता ही है, तो बाबा को बताने का क्या मतलब आता है? बाबा तो जान लेता है, जब जानी जाननहार है, भगवान है। नहीं, बाबा को जब कोई बात सुनाते हैं तो बाबा को भी अच्छा लगता है कि बच्चे हर बात मुझसे करते हैं, है ना? जब बात करते हैं तो भगवान को भी अच्छा लगता है। दुनिया में कहा जाता है कि नेहरू जब जेल में थे तो रोज इंदिरा जी के नाम एक पत्र जाता था और उन पत्रों में नेहरू ने इंदिरा जी को पॉलिटिक्स सिखाई थी और इतनी पॉलिटिक्स में वो माहिर हो गई कि उसको हराना बहुत मुश्किल हो गया था। लगातार कितने सालों तक उसने राज किया। ठीक इसी तरह बाबा भी वतन से हम बच्चों को रोज एक प्रेम पत्र लिखता है और लिख करके हम सबको मनुष्य से देवता बना देता है। ऐसा प्रेम पत्र जिसमें ऐसी ऐसी बातें भगवान ने बताई है जो हम सबको मास्टर भगवान भगवती बना दे। नेहरू ने तो उसको पॉलिटिक्स सिखा करके पॉलिटिशियन बनाया, लेकिन भगवान ने तो हमें मास्टर भगवान भगवती बनाया। तो इतना ये प्रेम पत्र के अंदर ताकत है, शक्ति है। दूसरा कहा जाता है कि ये संजीवनी बुट्टी है। जैसे लक्ष्मण जब बेहोश हो गया था तो हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर ले आए और उसमें संजीवनी बुट्टी थी। वो संजीवनी बुट्टी जब उसको सुंघाई गई तो बेहोश से होश में आ गया। ठीक इसी तरह माया भी चलते चलते हम सबको बेहोशी की नींद में सुला देती है, आलस्य अलबेलेपन की नींद में सुला देती है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को रोज मुरली के अंदर वो संजीवनी बुट्टी सुंघा करके क्या करते हैं, जागृत कर देते हैं। तो जागृत जब हो जाता है इंसान तो उसके कर्म कैसे होते हैं, और बेहोशी में जब है तो कर्म करने के योग्य ही नहीं रहता है। दुनिया के अंदर लोग भी श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं, इच्छा है अच्छा बनने की, लेकिन नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी संजीवनी बुट्टी नहीं है उनके पास। और बाबा ने बहुत सहजता से हम सबका परिवर्तन कर दिया, क्या थे और क्या बना दिया। रोज ये संजीवनी बुट्टी सुंघा सुंघा करके बाबा हम बच्चों को कितना जागृत कर देता है, अलर्ट कर देता है। आलस अलबेलेपन की नींद में जितना माया सुलाने का प्रयत्न करती है उतनी भगवान की मुरली हमें जागृत कर देती है। तो बाबा की मुरली से हमें कौन से खजाने सर्व प्राप्त हो जाते हैं, कहा ना सर्व खजानों की खान है। तो कौन से खजाने प्राप्त हो जाते हैं? सबसे पहला तो हमें ज्ञान का खजाना मिलता है। जिस ज्ञान के खजाने से जब उसको डाइजेस्ट करने लगते हैं तो जैसे आत्मा सशक्त हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। तो इसीलिए इस ज्ञान मुरली के अंदर सबसे अधिक है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने को रोज हजम करना पड़ता है, बार बार उसको मनन चिंतन में ला करके आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, उस बात को बार बार अंदर रिवाइज करते हुए हम आत्मा को सशक्त करते हैं मनन चिंतन करते हुए। इसलिए बाबा कहते ज्ञान खाली सुनने के लिए नहीं है, लेकिन उसको मनन चिंतन करते हुए उसको हजम भी करना है, तभी वो शक्ति बनती है, आत्मा की शक्ति बनती है। नहीं तो जैसे लोगों की शिकायत रहती है, क्या करे कमजोरी है, बस यही कमजोरी हमारे अंदर है, तो वो कमजोरी दूर कैसे होगी? वो कमजोरी दूर होगी जब हम उस ज्ञान को मनन चिंतन करते हुए उसको जीवन के अंदर धारण करते जाएंगे, तब आत्मा की वो शक्ति और आत्मा सशक्त हो जाती है। दूसरा खजाना जो इस मुरली के अंदर समाया हुआ है वो है खुशियों का खजाना। मुरली जब सुनते तो कितनी खुशी होती है। आज मैं देख रही थी माताओं को कितनी खुशी हो रही थी।
एक एक बात जब बाबा कह रहे थे और दीदी जब सुना रहे थे तो क्या हो रहा था, कोई माताएं सोई क्या, नींद आई किसी को? किसी को नींद नहीं आई। तो मुरली हमें इतनी खुशी प्रदान करती है और जब वो खुशी में रहते हैं तो बस जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया हो, ऐसे मस्त हो जाते हैं। होता है ना ऐसा कि मस्त हो गए, तभी तो कहा जाता है कि मुरली तेरी में है जादू। जादू कौन सा है? जादू माना जैसे कोई जादूगर होता है ना, तो जादू दिखाता है, तो जादू दिखाने से क्या होता है, परिवर्तन, रूप परिवर्तन कर देता है। कोई चीज निकालता है, कोई रुमाल निकालता है, लकड़ी बन जाती है। रुमाल निकाला, लकड़ी बन गई है, जादू दिखा दिया उसने। महाभारत के स्वरूप का परिवर्तन, तो भगवान के लिए भी जब ये गाया हुआ है कि मुरली तेरी में है जादू, जादू यानी परिवर्तन करने की ताकत है उसके अंदर, जो हम सबके स्वरूपों को परिवर्तन कर देता है, जो हम सबके जीवन को परिवर्तन कर देता है, ऐसा जादू इस मुरली के अंदर है। प्रैक्टिकली भी अगर देखे कि बाबा के पास आए थे उस समय किस कंडीशन में आए थे, दुखी, उदास, हताश, बहुत तनाव युक्त जीवन में, और आज आज क्या हो गया है, स्वरूप ही बदल गया। दूसरा कोई व्यक्ति देखने वाला देखे तो देखे कर वंडर खाए, अरे पहले तो ये कैसे थे और अभी तो चेहरा ही जैसे खिल गया है उनका, तेज से चमक रहा है, ये महसूस होता है। तो मुरली तेरी में है जादू, अर्थात जिससे हमारे स्वरूप को भगवान ने परिवर्तन कर दिया और ऐसा खुशी का खजाना दे दिया, जिस खुशी के खजाने से जैसे धरती पर पैर नहीं टिकते, उड़ते रहते हैं। जब हम माताओं को देखते हैं ना, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी चलती रहती है, बाबा के घर में खुशी में चलती रहती है। कभी देखते हैं तो मार्केट जा रही है, कभी देखते हैं तो क्लास में आ रही है, कभी देखते हैं तो देखो, और माताओं की ताकत देखो, बारिश भी ऐसी नहीं हो रही है जो बस कहीं पैर स्लिप हो गया, कहीं कुछ स्लिप हो जाए, बाबा संभाल करता है ना। बाबा जानता है मेरी माताएं आई हुई है, किसी का पैर टूटना नहीं चाहिए अगर बारिश हो, और इसलिए जब आप क्लास में बैठते हैं तब बारिश हो जाती है या रात को बारिश हो जाती है। कितना ख्याल रखता है बाबा आप सबका। मैं तो यही सोच सोच के वंडर खाती हूँ कि देखो बाबा को बारिश भी करनी है, ऊपर इतनी बारिश हो रही है, नीचे ऐसे समय पर करता है कि मेरी कोई माता का पैर स्लिप नहीं होना चाहिए, पैर टूटना नहीं चाहिए, तो बाबा कितनी संभाल कर रहा है, कितना प्यार है। इसलिए तो बाबा माताओं को देख करके बहुत खुश होते हैं, और क्या जितनी खुशी बाबा को है उतनी बाबा की मुरली सुनकर के हम सबको खुशी है कि नहीं है, है? डबल खुशी होगी, भगवान से भी ज्यादा खुशी हो ना, ये नशे से कहते हैं। तो इसीलिए मुरली तेरी में है जादू, जो परिवर्तन कर देता है। साथ ही ये कहा जाता है कि मुरली कहाँ बजती है, मधुवन में मुरली बाजे, ये गायन है शास्त्रों में भी। तो मधुवन में मुरली बाजे, मधुवन दो शब्द का बना है, मधु यानी जो मधुरता, जहां मधुरता है, जो मधु का छत्ता होता है ना, जहां मध इकट्ठा होता है, तो मधु वन है, वन यानी जंगल, जंगल अर्थात तपस्या का स्थान। पहले के समय में ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे तपस्या करने के लिए, लेकिन ये ऐसा तपस्या का स्थान है, अति मधुरता वाला तपस्या का स्थान है, जहां तपस्या करने का भी आनंद आता है, खुशी होती है ना, प्राप्ति का अनुभव होता है। इसीलिए कहा तीसरा खजाना जो हमें प्राप्त होता है इस तपस्या के माध्यम से, वो है वरदानों का खजाना। कि जब हम तपस्या में बैठते हैं तो भगवान जैसे वरदान बरसाते जाता है, इतना वरदानों की वर्षा करता है, और अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है तो उस वरदान को सहर्ष हम अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर लेते हैं और उसको जैसे अपने अंदर अनुभव करने लगते हैं। तो सर्व वरदानों का खजाना हमें प्राप्त होता है, सर्व गुणों का खजाना प्राप्त होता है, सर्व शक्तियों का खजाना प्राप्त होता है एक मुरली से ही। इसीलिए मधुबन में मुरली बाजे और मुरली में तेरी है जादू, ये जादू है कि जो हमें सर्व शक्तियों से संपन्न करता, सर्व गुणों से संपन्न करता, खुशियों से संपन्न करता, सर्व वरदानों से भर देता है। तो इसीलिए तो इसको खान कहा गया है। कई बार साधु संन्यासियों का जब महात्माओं का संत सम्मेलन होता है, वो देख करके आश्चर्य खाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 36 में ही तो स्थापित हुई, लेकिन आज ये 140 देशों में कैसे फैल चुकी है, कैसे फैल गई। आज अगर ये माताओं का संगठन देखे, अगर ऐसा साधु संतों का सम्मेलन हो और वो देखे तो आश्चर्य खाएंगे, इतनी माताएं है ना। जब यहाँ राजस्थान का जो गवर्नर थे चन्ना रेड्डी, जब यहाँ आए थे और उस समय सभी समर्पित बहनों की भट्टी थी ओम शांति भवन में, 3,000 बहनें थी, तो मुझे याद आता है जब वो हॉल में प्रवेश किया और सारी 3,000 बहनों को दादी ने इशारा किया सभी उठो, तो जैसे उसके सम्मान में सभी उठे, भट्टी चल रही थी और लास्ट में वो आए सबको देखने के लिए कि मैं देखना चाहता हूँ भट्टी कैसी होती है। तो भट्टी का वातावरण था और जैसे ही बहनें खड़ी हुई तो आप सोचो वो फोर्स कैसा होगा, सब सफेद वस्त्रधारी। तब उसने कहा ये तो एक सेना है, एक सेना तैयार की है। तो आज बाबा की ये माताओं की सेना नहीं है, शिव शक्तियों की सेना है, माताओं की सेना है। और इसलिए अव्यक्त पालना जो बाबा की हम बच्चों के लिए हो रही है, ये महसूस ही नहीं होता है कि बाबा मधुबन में नहीं है, क्योंकि हर पल जो हमारी पालना हो रही है वो पालना से ऐसा ही महसूस होता है कि बाबा हमारा आज भी इतना ख्याल कर रहा है। जैसे मधुबन में हर एक उस छोटा सा मधुबन था उस समय जो बाबा हर बच्चे का ख्याल करता था, आज इतना विशाल होने के बाद, इतना वट वृक्ष हो जाने के बाद भी बाबा हर एक आत्मा की उतनी ही अव्यक्ति पालना कर रहा है, ये महसूसता होती है। और इसीलिए ये मुरली द्वारा ही हमारी पालना हो रही है, जिसको कहा जाए कि ज्ञान दूध जो मिल रहा है, जो पूर्ण पोषण प्रदान करता है, ऐसा भगवान ज्ञान दूध, ज्ञान अमृत पिला करके, या ये कहे कि ज्ञान अंजन दे करके हमारा तीसरा नेत्र खोल देता है, जिससे हम बहुत कुछ देख सकते हैं। ये आंखें तो यहाँ की चीजें ही देखती है, महसूस करती है, लेकिन बाबा की जो अव्यक्ति पालना है, वो अव्यक्ति पालना हमें क्या अनुभव कराती है, ज्ञान अंजन दे करके तीसरा नेत्र जब खोलती है तो बहुत कुछ दिखाई देता है। सूक्ष्म वतन को भी देख सकते हैं, परम धाम को भी देख सकते हैं, सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को भी देख सकते हैं, शिव बाबा को भी देख सकते हैं, ये आंखें थोड़ी देखती है। इसीलिए गीता में भी कहा इन चरम चक्षु से तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन जब वो चक्षु खुलते हैं तो उस चक्षु के खुलने से ही हम बहुत कुछ देख सकते हैं। तो रोज बाबा क्या करते हैं, ज्ञान अंजन देता है, जिसको दुनिया में लोगों ने कहा ये सुरमा डालती है और क्या करती है, हाँ? भगा ले जाती है या उनको समझ ही नहीं आता है। तो ये ज्ञान का सुरमा है जो सुबह सुबह भगवान हमें श्रृंगार करते समय ये ज्ञान सुरमा ज्ञान अंजन दे करके तीसरा नेत्र खोल करके क्या कर रहा है। ऐसा जैसे कहा जाता है कि बस एक अलग दुनिया में हम खो जाते हैं, ऐसा महसूस होता है। तभी तो दुनिया में कहा जाता है, देखो शास्त्रों में भी हमारे इस ज्ञान मुरली का कितना सुंदर सुंदर वर्णन है कि जब मुरली बजती थी तो गोपी गोप गोपियां अपने शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी। गोप से भी ज्यादा किसका गायन है, गोपियों का गायन है कि वो अपना शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी और उस मुरली के तान के पीछे चली जाती। किसी ने एक आंख में काजल डाला है, किसी ने कहां तिलक लगाना चालू कर दिया, यहां लगाने के बजाय कहां लगा रहे हैं, तो ऐसे शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी, दैहिक शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी। भाव ये था कि दैहिक शुद्ध बुद्ध भूल जा करके उस मुरली के तान में जैसे मस्त हो जाती थी। और उन गोपियों को क्या अनुभव होता था, जो कहा जाता है अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के उस गोपिकाओं से पूछो कि वो अति इंद्रिय सुख क्या होता है। तो आज आप सभी भी उस अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही हो कि नहीं कर रही हो, कर रहे हैं, हरेक कर रहे हैं। ऐसी बाबा की मुरली की तान सुबह सुबह सुनते हैं तो दैहिक शुद्ध बुद्ध भूल जाती है। अभी तो अपने देह को श्रृंगार करने का कोई मतलब ही नहीं आता है। कोई श्रृंगारता है यहाँ, लाली लिपस्टिक लगाता है क्या? अरे भगवान इतना सुंदर श्रृंगार कर देता है तो वो स्थूल श्रृंगार करना या दैहिक शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं और आत्मिक नशे में हम ऐसे खो जाते हैं, जो कहा जाता है कि उस मुरली के तान में अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। और वो सब गोपिकाएं ये बैठी है यहाँ पर कि जो उस तान में शुद्ध बुद्ध खो करके बैठी है। घर बार याद आ रहा है किसी को, याद आ रहा है? बेटे बहू बच्चे पोते धोते सब याद आ रहे हैं क्या? किसी को याद नहीं आ रहा है। ये देखो इसको कहते शुद्ध बुद्ध भूल गए। तो मुरली की ये तान है जिसमें जो प्राप्ति करने लगे हैं, बाबा के घर में जो आकर के ये प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं, उसमें सब कुछ भुला दिया है। कई लोगों को तो आज कौन सा वार है, ये भी है तो गुरुवार का भोग लगा तब याद आया, अरे अच्छा आज गुरुवार है। नहीं तो याद आता है तिथि तारीख दिन कौन सा है, वो भी याद नहीं आता है। और जाने का दिन आएगा तो लगता है इतना जल्दी पूरा भी हो गया, ये होगा ना अंदर में, आए हुए 3 दिन हो गए और पूरा भी होने को आया है, लेकिन ये कहाँ गए, एक एक दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इतना बाबा की याद की मस्ती में हम मस्त रहे, है ना, मस्त रहे ना। बाबा के घर में जो हम सब बच्चों को क्लासेस मिल रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर क्लासेस हो रहे हैं, आप सबके फील होते हैं ना कि बाबा कैसी पालना करता है। तो इसीलिए बार बार दिल से क्या निकलता है, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हाँ तो शुक्रिया शुक्रिया बाबा का निकलता रहता है। और वही शुक्रिया जो है जैसे हम सबको भी ऐसा श्रेष्ठ बना देता है। अच्छा और कौन सा खजाना इस मुरली से प्राप्त होता है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना मिलता है मुरली से। कितनी अच्छी अच्छी बातें जो बाबा सुनाते हैं, जो हमारे संकल्पों में श्रेष्ठता ले आता है, हमारी विचारधारा को बदल देता है। और ऐसी सुंदर विचारधारा हमें प्राप्त हो जाती है, कई बार हर एक को मैं समझती हूँ, मैं कई लोगों को नहीं कहूंगी, लेकिन हर एक को ये अनुभव है कि जिस दिन मन में कोई बात होती है, कोई प्रश्न उठता है, उस दिन की मुरली में जवाब मिल जाता है, नहीं मिलता है? हाँ, देखो सबका हाथ ऊपर हो गया, मिलता है। भावार्थ ये है कि बाबा हमारे हर मन की बात सुनता है और दूसरे दिन मुरली के अंदर उसका जवाब मिल जाता है। हमारी अवस्था ठीक हो ना हो, लेकिन मुरली जैसे सुनने बैठेंगे तो अवस्था क्या हो जाएगी? बदल जाती है, क्योंकि बाबा ने जवाब दे दिया। जो मन में बात चल रही होती है, उस दिन की मुरली में वो बात मिल गई तो हमारे संकल्पों की दिशा को बदल देता है। जो व्यर्थ विचार चल रहे होते हैं तो वो व्यर्थ विचार समाप्त होकर के श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हमें इस मुरली से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे संकल्पों को जैसे स्विच ऑन ऑफ कर देता है बाबा, व्यर्थ संकल्पों की स्विच ऑफ कर देता है और श्रेष्ठ संकल्पों की स्विच ऑन कर देता है, तो रोज श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना हमें इस मुरली द्वारा प्राप्त होता है। और इसीलिए जैसे जैसे वो संकल्प मिलते हैं, बस मन के विचारों को दिशा बदलने लगती है। और बस घर जाओ तो जैसे क्या हुआ था कल, वो सारी बात भूल जाती है और नए सिर खुशी से उमंग उत्साह के साथ काम काज करना चालू कर देते हैं। तो देखने वाले देखते रहते हैं, यहाँ से जब गए थे तो मुंह लटका हुआ था इसका, तो इतना परेशान था, टेंशन में थे, इतनी बात बिगड़ गई थी ऐसा लग रहा था, और वहां जाने के बाद आकर के तो चेहरा ही बदल गया इनका, है कि नहीं? खुद भी महसूस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे आसपास जो रहने वाले हैं वो भी महसूस करते, ये क्या थे और क्या हो गए? हम तो सोचा था अभी ये रूठना जो है उसका एक हफ्ते तक चलेगा, लेकिन बाबा की मुरली सुनने के बाद तो इसका बदल गया, ठीक हो गए। इसीलिए कई बार कई लोगों के साथी जो है भले ज्ञान में नहीं भी चलते, लेकिन कहते नहीं तुम मुरली सुनने जाओ, क्या कहते, कहते कि नहीं कहते, जाओ जाओ मुरली सुन के आओ तो तुम ठीक हो जाएगी और तुम्हारा दिन भी ठीक जाएगा तो हमारा दिन भी ठीक हो जाएगा। तो ये चेंज हर एक महसूस करता है कि जब गए थे तो मुंह लटका के गए थे और आए तो खुशी के अंदर, और जैसे सारी बात सारी घटनाएं भूल गई और खुशी खुशी से काम में लग गए, तो कहते हैं इसको मुरली सुनने दो, रोज सुनने दो, है कहते हैं कि नहीं? लेकिन अभी लेकिन पर आती, लेकिन देखो हम सब बच्चों को बाबा ने ये जो श्रीमत दी है कि मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना? और नहीं किया किसी ने, मुरली मिस नहीं करते हैं ना? भले अगर सेंटर पर नहीं जा सके तो ऑनलाइन भी सुन लेते हैं ना, घर बैठे भी सुन लेते हैं। अच्छा कोरोना काल भी है तो कोरोना काल में भी किसी ने मुरली मिस नहीं किया, मुरली मिस नहीं किया ना, मुरली हमारा प्राण है तो मिस नहीं किया। लेकिन लेकिन कोरोना काल बीतने के बाद असली परीक्षा है कि अब ऑनलाइन ही सुनने का अभ्यासी हो गए या बीबी सेंटर पर जाने लगे, क्या कर रहे हैं? सेंटर पर जाते हैं कि ऑनलाइन ही सुनना है, बस घर बैठे हमको मधुबन की मुरली मिल रही है ना तो मधुबन की मुरली हम सुन लेते हैं। फेल हो जाएंगे, फेल हो जाए, क्योंकि मुरली हम सुनते हैं, लेकिन जब मुरली सुनते हैं तो मुरली से जो वाइब्रेशन मिलता है बाबा के घर से मिलता है, जहां रेगुलर योग ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही सब्जेक्ट चलते रहते हैं सारा दिन, जो आया कोर्स करने आया तो ज्ञान की वीणा सारा दिन जहां बजती रहती है वहां के वाइब्रेशन में परिवर्तन है। ऑनलाइन में आपको वो वाइब्रेशन नहीं मिलते हैं, इसीलिए ऑनलाइन में जैसे कोरोना के समय में आप सबने अनुभव किया कि जब बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई थी तो बच्चों ने पढ़ाई किया, आखिर तंग हो गए माता पिता भी, कब ये बच्चों की स्कूल आरंभ हो और वो जाकर के वहां स्कूल में पढ़ाई करे। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है, भले वो चालू भी कर दो आप ऑनलाइन उनको, लेकिन वो सुनते नहीं है, ध्यान एकाग्र नहीं होते, घर का माहौल ऐसा होता है, घर में वो वाइब्रेशन नहीं होते हैं, इसीलिए पढ़ाई होती नहीं है। जब बच्चा स्कूल में जाता है वहां जो एकाग्रता से, क्योंकि वहां का माहौल होता है, वहां संग होता है, वो बातें होती है, तो पढ़ाई आसान हो जाती है। ठीक इसी तरह बाबा के घर में भी जो वाइब्रेशन है, जब हम बाबा के घर में जाते हैं तो जैसे वो वाइब्रेशन से अपनी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। जैसे आप घर से मधुबन आए तो मधुबन के वाइब्रेशन में आते ही क्या हो गया, थकावट मिट जाती है। आए ट्रेन का सफर करके आए, घंटा दो घंटा ट्रेन लेट भी होगी, लेकिन आने के बाद मधुबन में पैर रखते ही क्या हुआ, जैसे एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि यहां वाइब्रेशन ऐसा है। ठीक इसी तरह सेंटर भले छोटा है लेकिन वहां पर भी वाइब्रेशन बना हुआ होता है। और इसीलिए जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा, हम किसी और के लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपने आप में उस वाइब्रेशन से अपने आप को चार्ज करने जा रहे हैं। और उस वाइब्रेशन में जब पढ़ाई पढ़ते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई है हमारी, तो उस वाइब्रेशन में जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें पूरी मुरली अंदर में ग्रहण हो जाती है, जो ऑनलाइन में ग्रहण नहीं होते। भले आप चार बार मुरली सुन लो, सबसे पहले नियम यही रखो कि भाई सारे दिन में एक बार हमें बाबा के घर जरूर जाना है, उस वाइब्रेशन से अपने आप को भर लेना है। और जैसे ही उस वाइब्रेशन से अपने आप को भर लेते, फिर घर में आकर के दोबारा तीसरी बार चौथी बार सुनो ना, कौन मना करता है। लेकिन एक मुरली तो बाबा के घर में जाकर के सुनो, तो उससे हम अंदर से चार्ज हो जाते हैं। इसीलिए बाबा की मुरली ही चार्ज करती है। दिन में 10 बार लोग आते हैं, 10 बार जो मुरली वहां सुनते रहते हैं, चलती रहती है, उसी से वो वातावरण बना होता है। वातावरण यानी कैसे बनता है, वातावरण वार्ता से वरण बनता है। तो घर में दुनियादारी की बातें चलती है सारा दिन, इसलिए वो वातावरण नहीं बनता है। लेकिन जब सेंटर पर सारा दिन वही बातें चलती रहती है तो वो वार्ता से वरण बनता है। इसीलिए जब सेंटर पर जाकर के सुनते हैं तो उसका हमें जैसे प्राप्ति का अनुभव होता है। वही चीज घर में आप सुनो, वही चीज वहां सुनो। घर में सुनने बैठे मुरली, दूध वाला आया, घर में सुनने बैठे फिर मुरली, कोई आया, फोन बजा और कुछ हुआ, 10 बार आपका ध्यान भटक सकता है, 10 बार आपका ध्यान भटक सकता है। लेकिन सेंटर पर जाकर के बाकायदा स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, आज कहा ना बाबा ने मुरली में, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। और इसलिए बाबा के बच्चों को आप महसूस करेंगे कि भले एज है 80 साल के हो जाओ, लेकिन जैसे अंदर में एक ताकत है। कौन सी ताकत है ये कोई साधारण ताकत नहीं है, ये शक्ति जो है, जो बाबा के घर में जाकर के मुरली सुनते हैं तो परमात्मा की जो शक्ति प्राप्त होती है, परमात्मा की डायरेक्ट पालना की जो शक्ति है, वो पालना की शक्ति हमें अंदर से तरोताजा कर देती है। इसीलिए कहते हैं मुरली सुनने के बाद दिल दिमाग तरोताजा हो जाता है, तरोताजा। एकदम ताजगी अंदर आ जाए, जैसे कोई फ्रेश हवा में चला जाए, और ऑक्सीजन कैसे मिल जाता है तो तरोताजा महसूस करने लगते हैं। ठीक इसी तरह ये मुरली भी हमारे दिल दिमाग के लिए ऑक्सीजन है, और ऐसा ऑक्सीजन है जो हमारे दिल दिमाग को तरोताजा कर देता है, इतना फ्रेश कर देता है कि पिछले दिन की सारी बातें भूल जाती है। किसी से अगर मन मुटाव हुआ, किसी से कोई बातचीत हो गई, किसी से कुछ जोर से बोलना हो गया, क्रोध आ गया, उसके कारण संबंधों में इफेक्ट आ गई, वो सब बातें क्या हो जाती है, भूल जाती है बुद्धि से, और भूल जाती है, और इसलिए अपनी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मुरली सुनने के बाद आप घर में आओ फिर मुंह लटका दो, ऐसे होता है क्या? कभी हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। मुरली की ताकत वो है, इसीलिए सर्व खजानों की खान जो मुरली है, जो खुशी का खजाना देता है, जो ज्ञान का खजाना हमें देता है, और वो ज्ञान को प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए जैसे लगते हैं, तो उसी से हमारे अंदर ताकत आती है। और एक बात, अंतिम बात सुनाना चाहती हूँ कि मुरली में जो बातें हैं, तो बाबा कई बार कई संकेत मुरली में दे देता है। जो दिन में होने वाला होता है, कोई बात होने वाली होती है, उस बात का संकेत मिल जाता है, तो मुरली में भविष्य का भी संकेत मिल जाता है। और जब संकेत मिलता है और आप उन संकेतों को अगर कैच कर लो, बुद्धि की लाइन अगर क्लियर है, तो बाबा के उन संकेतों को आप कैच कर लेते हो, और कैच करके उसी अनुसार जब आप दिनचर्या में चलते हो, उन संकेतों के ऊपर ध्यान रखते हुए, अटेंशन रखते हुए जब चलते हो, तो आप देखेंगे कई प्रकार के नुकसान से आप बहुत सहज बच जाते हो। और लगता है, महसूस होता है कि देखो आज बाबा ने ये बात कही थी, और अगर आज मैंने मुरली मिस किया होता था ना, बाबा के संकेत को मैं कैच नहीं कर पाती थी और मैं वही कार्य करती थी, लेकिन क्योंकि बाबा ने आज कहा था इसलिए मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया, या ये समय पर नहीं ये समय पर किया, तो जैसे बड़े से बड़े नुकसान से हम बच गए, ये महसूस होता है। रोज ये रास्ता लेकर के चलते थे, आज सोचा नहीं ये रास्ता लेकर के जाओ, और पता चला बाद में कि इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ थी, तो लगता है कि अच्छा हुआ देखो बाबा ने कैसे मेरा रास्ता ही मोड़ दिया, नहीं तो मैं तो रोज उसी रास्ते से आने जाने वाली, आज कैसे मेरा रास्ता बाबा ने मोड़ दिया। तो कई संकेत ऐसे होते हैं जो बाबा देते हैं, अगर मैंने कैच नहीं भी किया तो भी बाबा जैसे अंगुली पकड़ के हमको लास्ट मोमेंट विचार देते, इधर से नहीं इधर से जाओ, और हम उधर से चल पड़ते हैं। तो ये बाबा की जो पालना है मुरलियों से, उस पालना के अंदर जो शक्ति समाई है, जो परिवर्तन समाया हुआ है, जो हम सबके मन की स्थिति को सहज परिवर्तन करते हैं, दिल की भावनाओं को परिवर्तन करते हैं, हमारी दृष्टि और वृत्ति को परिवर्तन करते हैं, हमारी स्मृति को परिवर्तन, इतना सारा परिवर्तन ये रोज की मुरली से ही होता है, और साकार मुरली से ही होता है। इसलिए आज के बाद कभी ये नहीं कहना कि बाबा की रोज की मुरली तो वही की वही होती है, ना वही की वही नहीं होती है। ध्यान से अगर सुनेंगे तो हर रोज की मुरली अलग होती है। हमको 50 साल हो गए मुरली सुनते, है ना, हमने पूछा कि ये मुरली हर 5 साल में रिपीट होती है तो कितनी बार रिपीट हो रही है, तो बताया गया कि 11वीं बार रिपीट हो रही है, 11वीं बार। अब 11वीं बार माना वो मुरली 50 साल में 11 बार तो सुन लिया, लेकिन तो भी हमको महसूस होता है आज ये बात तो बाबा ने नहीं कही, ये मुरली तो जैसे पहली बार ही सुनी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आज से 5 साल पहले हमारी मनस्थिति की परिपक्वता एक अलग स्तर पर थी। 5 साल लगातार मुरली और ज्ञान की बातें सुन सुन करके जो मनस्थिति की परिपक्वता है वो यहां से यहां आई, हमें पता नहीं चलता है। इसलिए आज वही 5 साल पहले वाली मुरली जब सुनते हैं तो एक अलग परिपक्वता के स्तर से सुनते हैं। जब अलग परिपक्वता के स्तर से सुनते तो उसकी गहराई को समझने की ताकत आ गई। अच्छा, ये बात थी जो 5 साल पहले रियलाइज नहीं हुआ था और उससे 5 साल पहले भी रियलाइज नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय हम बहुत नीचे के स्तर पर थे और आज अलग स्तर पर आ गए हैं। तो इसलिए हर बार की मुरली अलग ही महसूस होती है जैसे कि पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि 5 साल पहले जो परिपक्वता का लेवल था वो अलग था, 5 साल के बाद जो परिपक्वता का लेवल है वो अलग लेवल है। इसीलिए वो मुरली हमें हर बार अलग गहराई से समझ में आती है, अलग तरीके से समझ में आती है और महसूस होता है ये मुरली तो हमने पहले सुनी नहीं थी, ये तो पहली बार सुने। तो बाबा की मुरली सुन सुन करके ही हमारी परिपक्वता, ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती है और परिपक्वता ऐसी हो जाती जो कई बातों के गहराई को समझने के पकड़ने की क्षमता बुद्धि के अंदर आ जाती है। इसीलिए बाबा ने कई बार कहा है कि हर ब्राह्मण बच्चे का जब जन्म होता है तो बाबा 2 गिफ्ट देता है हर बच्चे को। कौन सी 2 गिफ्ट देता है? दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि जन्मते ही हमें प्राप्त हो जाती है। ये दिव्य बुद्धि से मुरली की गहराई को समझने की क्षमता आती है। दिव्य दृष्टि माना जो मुरली में बातें कही है जो ये चरम चक्षु से नहीं देख सकते हैं उसको देखने की क्षमता वो भी प्राप्त हो जाती है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं उसको समझने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। तो ये 2 गिफ्ट जब भगवान हमें जन्मते ही देता है तो जैसे जैसे सुनते जाते हैं वैसे वैसे हमारी परिपक्वता भी बढ़ती जाती है। इसीलिए हर रोज की मुरली हमें अलग महसूस होती है और हर रोज ऐसे लगता है जैसे खजाना मिला या ऐसा माल मिला जिससे हमारी तंदुरुस्ती और अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए मुरली तेरी में है जादू और मधुबन में मुरली बाजे, तो वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम मुरली के आधार से ही कर सकते हैं। तो ये मुरली हमें सुन करके अपने अंदर क्या करना है, उस क्षमता को विकसित करना है, उस क्षमता को बढ़ाना है, न कि माया हमें बेहोश कर दे। और बेहोश अगर कर भी दे, आलस अलबेलापन आ भी जाए, तो जरूर मुरली सुनने जाओ, वो संजीवनी बुट्टी बाबा सुंघा कर आपको सुरजित कर देगा और जादू का काम करेगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। पांच मिनट के अंदर जिसको भी उठना है उठ करके वापस आ जाए, फिर इतनी एकाग्रता से हम सभी योग में बैठेंगे, आत्मनिरीक्षण करते हुए सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे। नहीं तो एक एक करके बाद में भी उठते रहते हैं तो दूसरे को 10 लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसीलिए जिसको भी उठने की दिल है वो पहले ही उठ करके आ जाए। बाकी जो यहाँ बैठे हैं, दो मिनट सब खड़े हो जाओ, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज कर लेने से बैठे बैठे जो सुस्ती आ रही होंगी वो भी सहजता से निकल जाएंगी। थोड़ा हाथ पैर हिलाओ बहुत अच्छी तरह से, हाँ, पैरों को भी हिलाओ थोड़ा अच्छे से एकदम, है ना। फिर एक एकाग्रता के साथ अपनी कर्मेंद्रिय को जितनी एकाग्रता में रखेंगे उतनी मन बुद्धि की एकाग्रता भी सहज आ जाएगी। शारीरिक एकाग्रता मानसिक एकाग्रता को ले आता है, तो जाने वाले जाकर के तुरंत 5 मिनट में वापस आ जाए, और तब तक यहाँ जो बैठे हुए हैं वो एक्सरसाइज करे या थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश कर ले, स्ट्रेचिंग कर ले हाथ ऊपर करके, हाँ, एकदम स्ट्रेचिंग करे, क्लैपिंग करे। लेफ्ट राइट करो थोड़ा, पैरों को ऊपर नीचे करो थोड़ा, है ना। और अगर हो गया हो, आप समझते हैं अभी आप स्वस्थ हैं एकदम नमः शाम का योग करने के लिए, तो बैठ सकते हैं।
आज के इस नमः शाम के समय में हम सभी बाबा के अति लाडले नैनों के नूर सबसे न्यारे बाबा के प्यारे राज दुलारे ब्रह्मावत्सों को बाबा बुला रहे हैं अपने वतन में। तो कुछ क्षणों के लिए हम अपने मन बुद्धि को देह और देह के कर्मेंद्रिय से न्यारा कर ले चलते हैं मन बुद्धि को सूक्ष्म वतन की ओर। मन बुद्धि को हल्का करते हुए मैं आत्मा अपने अंतवाहक शरीर द्वारा चलती हूँ पंच तत्व की दुनिया से दूर सूर्य चांद तारा गण से भी पार अपने सूक्ष्म वतन में, जहां चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है, अपने अंतर्वाहन से उस लोक में पहुंचते ही मैं अपने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप को धारण करती हूं। बहुत सुंदर ये अव्यक्ति ड्रेस को पहनती और सहज ही उड़ती हुई अपने बाप दादा के सन्मुख स्वयं को देख रही हूं। मैं फरिश्ता अव्यक्त बाप दादा संपूर्ण स्वरूप में मेरा आवाहन कर रहे हैं। बाबा बाहें पसारे, आओ बच्चे, आओ बच्चे कहते हुए बुला रहे हैं। और मैं फरिश्ता बाबा की बाहों की माला में समा जाती हूँ, खो जाती हूँ। बाप दादा से पावरफुल दृष्टि, मुझे प्राप्त हो रही है। बाबा की दृष्टि में शक्ति समाई हुई है। जो मेरी कमजोरियों को दूर कर रही है, और मैं फरिश्ता बाबा की शक्ति को स्वयं में धारण कर रही है। धीरे धीरे मैं फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख कमलासन पर विराजित होती हूँ। अव्यक्त वतन का ये कमल आसन कितना न्यारा और प्यारा है। इस आसन पर बैठते ही मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल देख रही हूं। सप्तरंगी आभा मंडल है। सप्तरंगी आभा मंडल में मैं आत्मा हर गुण और शक्ति से भरपूर हो रही बाबा के नैनों से असीम प्यार को अपने हुए पर बरसता हुआ महसूस कर रही हूं। बाप दादा कितनी पावरफुल पालना इस अव्यक्त स्नेह से कर रहे हैं। मैं और मेरा बाबा दूसरा न कोई, ओ बाप दादा की कि दिव्य अलौकिक शक्तियां मुझे महसूस करा रही है। और मैं स्वयं का आत्मनिरीक्षण करती हूं मैं बाबा की श्रीमत का हाथ पकड़ते हुए हर कदम चलती हूँ। ये श्रीमत का हाथ ही मुझे संपन्नता का अनुभव कराएगा, सर्व प्राप्तियों का अनुभव कराएगा, और मैं आज स्वयं से यह दृढ़ संकल्प करती हूं कि बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं सदा चलती रहूंगी। इस जीवन की यात्रा में जितना जितना इस श्रीमत की पालना करती जाऊंगी उतना ही मैं अपने जीवन को भरपूर संपन्न अनुभव कर सकूंगी। ये दृढ़ संकल्प करते ही बाबा का असीम प्यार मुझ पर बरस रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि मैं बाप समान बन जाऊं, मैं स्वयं में आत्मनिरीक्षण करती हूं कि उस बाप समान स्टेज के लिए कहां कहां कौन सी कमजोरियां अभी तक मुझ में रही हुई है, और इन कमजोरियों को भरने के लिए ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की ऊर्जा से ही मैं इन कमजोरियों को दूर कर सकती हूं। मैं दृढ़ संकल्प करती हूं कि मैं प्रतिदिन अपने जीवन को बाबा की मुरलियों से, ज्ञान की शक्ति से स्वयं को सशक्त करूंगी। और महसूस करती हूं बाप दादा की लाइट और माइट की किरणें मुझ में समा रही है। बाबा की लाइट और माइट की किरणों से उन कमजोरियों को मैं दफ्त करती हूं, समाप्त करती हूं। और स्वयं में हल्कापन महसूस कितना सुंदर अनुभव है ये। बाबा, मेरे मीठे बाबा, आपकी शक्ति से मैं सशक्त होकर आप समान जरूर बनोगी। ये मेरा दिल का वायदा है आपसे। धीरे धीरे इस नमन शाम के समय बाप दादा का वरदानी हाथ मैं स्वयं पर महसूस कर रही हूं। और बाप दादा सर्व वरदानों का खजाना मुझे प्रदान कर रहे हैं। कितना सुंदर अनुभव है। बाबा का वरदानी हाथ मुझे सर्व वरदानों से, सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर रहे हैं। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, मुझ फरिश्ते के जीवन धीरे धीरे मैं महसूस कर रही हूं कि बाबा द्वारा प्राप्त ज्ञान गुण शक्तियों को एवं सर्व वरदान सर्व प्राप्तियों के लाइट और माइट से सारे विश्व को प्रकाशित करती हूं और इस लाइट और माइट की किरणों को मैं सारे संसार में प्रवाहित होने देती हूं। और दिल से, यही बार बार निकलता है। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह संगम युग वाह। वाह ड्रामा वाह, इतना श्रेष्ठ स्वयं को महसूस कर रही, मुझ आत्मा जैसा भाग्य इस संसार में और किसी का नहीं है। मैं भगवान का चुना हुआ रत्न हूं। भगवान का खुशबूदार फूल, अपने ज्ञान गुण और शक्तियों की खुशबू से इस जग को महकाना है। बार बार दिल से यही भाव निकल रहा है, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। शुक्रिया ब्रह्मा बाबा, शुक्रिया आपका। शुक्रिया मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, शुक्रिया। धीरे धीरे मैं फरिश्ता अपने उस संपूर्ण फरिश्ता ड्रेस को छोड़ अपने अंत वाहन से, अंतर वाहन से उड़ते हुए वापस इस पंच तत्व की दुनिया के अंदर। शरीर में भ्रुकुटि के मध्य में स्थित होती
अपनी किस्मत का जो धड़कन में